अयान के मना करने के बावजूद आयु फैज से मिलने उसके वार्ड में चली गई। हालांकि वो अनजाने में उससे मिली थी, उसके बावजूद अयान उससे गुस्सा था। अयान ने एक बार फिर फैज के सामने आयु पर गुस्सा उतारा था, इस वजह से आयु भी उससे नाराज हो गई और गुस्से में वीआईपी वार्ड से बाहर निकल रही थी। अयान ने पीछे से आयु को आवाज दी तो उसने मुड़कर उसकी तरफ अपने पीछे न आने के लिए कहा। अयान ने आयु की बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसके पीछे आरव खड़ा था। अयान को चुप देखकर आयु पीछे पलटी तो आरव को देखकर वो भी चुप हो गए। मुझे देखकर दोनों चुप क्यों हो गए और क्या चल रहा है दोनों के बीच? आयु, तुम अयान से इतनी बदतमीजी से बात क्यों कर रही हो? आरव ने उन दोनों की तरफ देखकर हैरानी से कहा। वो उन दोनों के चेहरे गौर से देख रहा था। आरव को देखने के बाद उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। कुछ भी तो नहीं हुआ आरव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों के बीच चलता रहता है, तुम ज्यादा ध्यान मत दो, आयु ने बात को टालने के लिए कहा। फिर उसने अयान की तरफ देखा और इशारे से आरव को कुछ भी बताने से मना कर दिया। वीआईपी वार्ड शुरू होने से पहले एक पासे जाता था जो कि अब पूरी तरह खाली था। आरव ने आयु का हाथ पकड़कर उसे अपने पास किया और उसकी आंखों में देखकर कहा, क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो मिसेस खुराना? तुम बेवजह शक कर रहे हो, मैं कुछ नहीं छुपा रही, आयु ने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा और फिर आरव से दूर हो गई। आरव समझ गया था कि आयु इतनी आसानी से उसे कुछ भी नहीं बताने वाली, तो उसने अयान की तरफ देखा। अयान की तरफ देखकर आरव ने सिर हिलाकर कहा, वैसे क्या हो गया जो तुम्हें भाड़ में भेजा जा रहा है? आजकल किसी के बारे में भला सोचने का टाइम नहीं है। अगर आप उनके बारे में अच्छा सोचते हो तो वो आपको भला बुरा कहते हैं, आपको भाड़ में भेजते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं, बोलते हुए अयान ने आयु की तरफ देखा जो उसकी तरफ घूरकर देख रही थी। आयु का चेहरा देखकर अयान ने कहा, तुम्हारी इस तरह देखने से मैं चुप नहीं रहने वाला और ना ही भाई से कुछ छुपाने वाला हूँ। अयान की बात सुनकर आरव के फेस पर ईविल स्माइल थी। उसने आयु का हाथ पकड़कर कहा, तब तो मुझे सच नहीं जानना चाहिए, लगता है कुछ बड़ी ही बात है और मैंने मिसेस खुराना को मुझसे कुछ भी छुपाने के लिए मना किया है। देखते हैं बात कितनी बड़ी होती है और उस हिसाब से इसके साथ क्या किया जाना चाहिए। हे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और ना ही बात सीरियस है, आयु ने घबराते हुए कहा। आयु के चेहरे पर घबराहट देखकर आरव के फेस पर स्माइल थी। उसने भौहें उठाकर कहा, ये तो बात पता चलने पर डिपेंड करता है। चलो अयान, अब जैसा है जो है, एक अच्छे लिटिल ब्रदर की तरह चुपचाप सब बता दो। जैसे ही आयु को लगा कि अयान आरव को सब बताने वाला है, वो वहां से जाने लगी। आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, सब सुनना पड़ेगा बेबी। अयान ने कुछ भी बताने से पहले एक नज़र आयु की तरफ देखा जो अभी भी आंखों ही आंखों में उसे आरव को कुछ भी न बताने की रिक्वेस्ट कर रही थी। अयान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अयान ने आरव की तरफ देखकर कहा, सुबह हॉस्पिटल के बाहर एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें चार लोग घायल हो गए थे। उनमें से एक आदमी बड़ा अजीब है और ये मैडम जाकर उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। एक तो वो उसे कब से घूरे जा रहा था, ऊपर से टच करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, इंसान से गलती एक बार हो जाती है। मैंने इसे सब समझाया था कि आगे से उससे दूर रहना, उसके बावजूद जाकर उसके वार्ड में उसकी सेवा पानी कर रही थी। देखो, तुम उसे गलत समझ रहे हो, वैसा कुछ भी नहीं कर रहा था, पेशेंट को ठीक से होश भी नहीं था। तुम उस पर इतना बड़ा एलिगेशन कैसे लगा सकते हो? जब तुम आए थे तब मैं उसे पानी पिला रही थी, बस और कुछ नहीं था, आयु ने अपनी सफाई देते हुए कहा। पूरी बात जानने के बाद आरव के चेहरे पर गुस्सा था। उसने आयु की तरफ देखा और कहा, अच्छा, तुमने कभी मुझे तो पानी नहीं पिलाया? तुम शायद भूल रहे हो, मैंने तुम्हें सुबह ही कॉफी पिलाई थी, अब बीच में पानी कहाँ से आ गया यार? तुम दोनों भाई बिल्कुल इम्पॉसिबल हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। मैं मिस्टर कपूर से तुम्हारी कंप्लेन करने जा रही हूँ, आगे से तुम मुझसे सबके सामने बदतमीजी से बात नहीं करोगे। आरव का ध्यान हटाने के लिए आयु ने सारा ब्लेम अयान पर डाल दिया। फिर उसने आरव की तरफ देखा और उंगली दिखाते हुए कहा, आगे से तुम भी हॉस्पिटल नहीं आओगे, मैं खुद आ सकती हूँ और वापस यहाँ से चली भी जाऊंगी। मैं मिस्टर कपूर से बात करके अपना सीनियर चेंज करने जा रही हूँ और तुम पर तो बैन ही लगवा दूंगी ताकि तुम आगे से यहाँ दिखाई नहीं दोगे। आयु को लगा उसकी बात सुनकर अयान और आरव का ध्यान फैज के ऊपर से हट जाएगा, तभी दोनों एक साथ बोले, हॉस्पिटल हमारा है। व्हाट यू मीन बाय हॉस्पिटल तुम्हारा है? अगर तुम्हारा है तो तुम दोनों मनमानी करोगे क्या? आयु ने चिढ़कर कहा। आरव ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और जवाब में कहा, यस ऑफ कोर्स, हम मनमानी करेंगे। तुम्हारा जो भी पेशेंट है, आई मीन वो इंसान जो भी है, आगे से तुम उसके पास नहीं जाओगी। ये बात मैं इसे सुबह ही बोल चुका हूँ, पर मेरी बात सुन कहाँ रही है? आई होप आप इसे बेटर तरीके से समझा सको। मैंने कुछ कहा तो मुझसे झगड़ा करने लगेगी, अजीब लड़की है, जब देखो अपनी मनमानी करती रहती है, अयान बोला और फिर आयु की तरफ सार्कास्टिक वे में सिर हिलाकर वहां से चला गया। वो जानता था आरव आयु को बेटर तरीके से संभाल सकता है। अयान के जाते ही आरव ने आयु की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे तुम्हारे उस पेशेंट से मिलना है मिसेस खुराना, मैं भी तो देखूं कितना खास है वो जिसे तुम अपने हाथों से पानी पिला रही हो। तुम दोनों ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ये मेरा काम है और तुम इसे मुझे करने से रोक नहीं सकते हो, आयु ने आरव को समझाते हुए कहा। आयु इस बारे में आरव से और बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने टॉपिक बदलते हुए कहा, सुबह मॉम ने हमें ओबेरॉय मेंशन आने के लिए कहा था, हमें लेट हो रही है, फिर वापस खुराना मेंशन भी जाना है, बात टालने का अच्छा तरीका है। ठीक है, फिर वहीं चलते हैं। आरव ने जवाब दिया और आयु का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। जहां पासेज खत्म होता था वहां कोई खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही आरव और आयु वहां से गए, उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध ली। वो कोई और नहीं फैज था, जिसे आरव को आयु के साथ देखकर गुस्सा आ रहा था। फैज ने गुस्से में दीवार पर पंच मारते हुए कहा, ये इस इंसान से शादी कर भी कैसे सकती है, इन्हें कोई और नहीं मिला था क्या? काश हम उस रोहन चौहान से पहले मिले होते तो इस लड़की से भी मिल चुके होते। अब कैसे पता लगाएं कि उसने अपनी मर्जी से आरव से शादी की है या किसी मजबूरी के चलते। जहां तक हमें याद है, रोहन चौहान ने कुछ महीने पहले कॉल करके ये कहा था कि उसे आरव के पास भेजने के लिए एक लड़की मिल गई है। तो क्या ये वही लड़की है? यकीन नहीं होता कि ये किसी मिशन के चलते आरव के साथ है। इनकी बातों से तो कुछ और ही महसूस हो रहा है, बोलते हुए फैज को एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया। तब उसने खुद ही अपनी बात को झुठलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके दिल में क्या है या ये क्या चाहती है। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि हम इन्हें चाहते हैं और हमें ये अपने पास चाहिए।
फैज खुद से बातें करते हुए वापस अंदर आ गया था। अंदर जाकर वो सोच रहा था कि वो कौन इंसान है जो इस मामले में उसकी मदद कर सकता है। तभी उसके दिमाग में छवि सिंघानिया का नाम सूझा। वो आरव को पहले से ही नापसंद करती थी और उसके बारे में हर एक अपडेट रखती थी। छवि के बारे में सोचकर फैज ने तुरंत उसे मैसेज करके हॉस्पिटल आने को कहा। वहीं आयु आरव के साथ गाड़ी में थी। आरव गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वो उसके पास में बैठी उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। उन्हें हॉस्पिटल से निकले हुए लगभग 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन इस बीच आरव ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा था। इससे आयु समझ गई कि आरव उससे नाराज है। आयु ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और आरव के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ या तुम्हें छोड़कर किसी और के पास जाना चाहती हूँ? आयु की बात सुनकर अचानक आरव का पैर ब्रेक पर पड़ा और उसने गाड़ी रोक दी। फिर उसने आयु की तरफ देखकर कहा, तुम्हें ये किसने कहा कि मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ? बस मुझे उस इंसान के बारे में जानना है जो तुम्हें लेकर गलत इरादे रखता है। मैं नहीं जानता तुम्हारे दिल में क्या है या क्या सोचकर तुम मेरे साथ रह रही हो, पर मेरा सच तुम पहले दिन से जानती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। ऐसे में कोई तीसरा इंसान हमारे बीच में कैसे आ सकता है? मैंने कहा ना, तुम ओवरथिंकिंग कर रहे हो। हमारे बीच में कभी कोई तीसरा इंसान नहीं आ सकता। और क्या अभी भी तुम्हें डाउट है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों रह रही हूँ? हद है यार, बहुत बड़े बिजनेसमैन बनते हो और छोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती, आयु ने सिर हिलाकर कहा और अपना हाथ आरव के हाथ से हटा लिया। वो विंडो से दूसरी तरफ देख रही थी। अब उसे आरव पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसने अभी तक उसके दिल की फीलिंग्स नहीं समझी थीं। आरव ने फिर से गाड़ी स्टार्ट की। उसके फेस पर हल्की स्माइल थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मिसेस खुराना, मुझे बिना बोले नहीं समझ आता है और तुम्हें अपने दिल की बात करनी ही पड़ेगी। थोड़ा क्रिएटिव तरीके से प्रपोज करना। मैंने बहुत जल्दबाजी में प्रपोज कर दिया था, जो कमी मैंने रखी है वो अब तुम पूरा करने वाली हो, आयु ने आरव की तरफ देखे बिना ही जवाब में कहा। मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली हूँ, मुझे ये सब चीज़ें बहुत चीज़ी लगती हैं। ये तो वक्त बताएगा कि तुम क्या करने वाली हो और क्या नहीं। मेरे साथ रहते हुए तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा जो तुम्हें नापसंद हो, यू नो वॉट आई मीन, आरव आयु को परेशान करने के लिए बोल रहा था। तभी उसने आरव की बात बीच में काटते हुए कहा, मैंने कहा चुप हो जाओ, पूरा दिन मैंने बहुत काम किया है और मुझे अब रेस्ट चाहिए। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है तुम्हारी पूरी लाइफ सर्जरी करने में और सर्जरी करने से पहले जो नींद पूरी करनी होती है उसी में निकल जाएगी? मैं पहले ही कह रहा हूँ, अगर तुमने मुझे थोड़ा सा भी अंडर एस्टिमेट किया या पूरी अटेंशन नहीं दी तो तुम्हारे मेडिकल लाइसेंस रद्द करवा दूंगा। तुम अच्छे से जानती हो मैं ऐसा करवा भी सकता हूँ। तुम मेरे हॉस्पिटल में काम करती हो, मिस्टर कपूर को बोल दूंगा कि तुम पर इलीगल दवाइयाँ सप्लाई करने का एलिगेशन लगा दे। फिर आरव आयु को परेशान करने के लिए बोल रहा था, लेकिन उसने नोटिस किया कि इस बार आयु ने ना तो उसकी बात को बीच में काटा है और ना ही कोई जवाब दिया है। उसने आयु की तरफ देखा तो वो सो चुकी थी। लगता है अब तो जो कहा है वो करके दिखाना ही होगा, उसे देखकर आरव ने सिर हिलाकर कहा और गाड़ी ड्राइव करने लगा।